بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم معزز سامعین، آج ہم آپ کے لیے کتاب ریکارڈ کر رہے ہیں، آنگن. یہ ایک مکمل کتاب ہے جو 318 صفحات پر مشتمل ہے. مصنفہ خدیجہ مستور، آواز داشا. دیگر معلومات یا دیگر مزید کتابوں کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 0306 7878 222 یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.kartaba.org www.qurtaba.org. تو آئیے سنتے ہیں کتاب آنگن، پارٹ نمبر 1، پیج نمبر 5. ماضی. سردیوں کی رات کتنی جلدی سنسان ہو جاتی ہے. آج بھی شام سے بادل چھا گئے تھے، خنکی بڑھ گئی تھی. کھڑکیوں کے پاس لگے ہوئے بجلی کے کھمبے کا بلب خاموشی سے جل رہا تھا. گلی کے اس پار اسکول کی ادبنی عمارت کے قریب درختوں کے جھنڈ سے الوں کے بولنے کی آواز آ رہی تھی. اس کی آواز کی نحوست رات کو اور بھی سنسان کیے جا رہی تھی. پاس کے بڑے کمرے میں اب قطعی خاموشی تھی. چمی کے کروٹے بدلنے کی آہٹ بھی محسوس نہ ہوتی تھی. سو رہی ہے مزے میں، عالیہ نے بڑی حسرت سے سوچا. اسے نیند نہیں آ رہی تھی. رات کو نیند نہ آنا کتنا تکلیف دہ احساس ہوتا ہے. یہ احساس اس وقت تو اور بھی زیادہ شدید ہو جاتا ہے جب بالکل نئی جگہ ہو. شاید نئی جگہوں کی پہلی رات اسی طرح بے خوابی سے گزرتی ہوگی. اس نے ایک بار پھر سو جانے کی کوشش کی. کھڑکی کے پٹ بھیڑنے سے ننھے سے کمرے میں اندھیرا چھا گیا اور وہ لحاف میں منہ چھپا کر اس طرح لیٹ کی جیسے واقعی سو رہی ہو. دیر تک بے سدھ پڑے رہنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ ساری جدوجہد بیکار گئی. نیند کا تو کوسو پتا نہ تھا. ماضی کی یادیں بگولے کی طرح دماغ میں لوٹے لگا رہی تھیں. وہ بڑی بے نیازی سے اپنی بستر پر پلتھی مار کر بیٹھی تھی. کھڑکی کے پٹ کھول کر باہر دیکھنے لگی. گلی کے اس پار اسکول کی عمارت، آم اور پیپل کے گھنے درخت سب اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے. شام کو یہ سب کتنا صاف اور خوبصورت نظر آ رہا تھا. کھڑکی میں بیٹھ کر اس نے یہ سب کچھ ذرا دلچسپی سے دیکھا تھا، مگر اس وقت اندھیرے میں درخت سیاہ پہاڑوں کی طرح محسوس ہو رہے تھے. اور جب ہوا کا تیز جھونکا چلتا تو یہ درخت بچپن میں سنی ہوئی کہانیوں کے بھوتوں کی طرح خوفناک معلوم ہوتے. اس طرح تو نیند آنے سے رہی، اس نے سوچا اور کھڑکی کے پٹ بھینچ کر بند کر دیے. لیٹتے ہوئے اسے اپنا جسم ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا. سارے دن کے سفر کی بے چینی نے کہیں کا نہ رکھا تھا. ہائے بھائی، وہ کرا ہی، اب نیند نہیں آتی. جب تک دماغ کی دنیا ویران نہ کی جائے، نیند کا کہاں سے گزر ہو. ماضی کی یادیں ہر طرف سے ڈراتی چلی آتی تھیں. لوگ کہتے ہیں کہ ماضی کو بھول جاؤ، پیچھے مڑ کر دیکھنے میں کیا رکھا ہے، آگے بڑھے جاؤ. پر اسے تو ورثے میں صرف اپنا ماضی ہی ملا تھا. ماضی جس سے اس نے کیا کچھ نہیں سیکھا، اب وہ اس سے کس طرح دامن بچائے. جن حالات میں وہ یہاں آئی تھی ان کی وجہ سے تو اور بھی یادوں نے سر اٹھا رکھا تھا. جانے اماں بھی سوئی ہوں گی یا نہیں. گھر میں کیسی خاموشی تاری تھی. گلی میں کوئی راہگیر ٹھٹری ہوئی آواز میں گاتا گزر گیا، مفت ہوئے بدنام سنوریا تیرے لیے. یہ رات کس طرح گزرے گی؟ ابا جیل میں تمہاری راتیں کس طرح گزر رہی ہوں گی؟ اس نے جیسے بلبلا کر گھٹنے پیٹ میں اڑا لیے. دور کہیں سے گھڑیال کے 11 بجنے کی آواز آ رہی تھی. ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی تھی हवा के झोंकों में आती हुई बौछाड़ खिड़की के पट्टों पर मध्यम लय में गुनगुना रही थी। अब ये जिंदगी कैसी होगी, उसे इससे डर कर सोचा। कमरे में कितना अंधेरा था, उसे अपने सवाल पर अपनी तरह अंधेरा छाया हुआ महसूस हुआ। उसने घबरा कर आंखें बंद कर ली। नींद तो अब जैसे कोसों दूर थी, पर माजी की यादें उसकी रात कटवाने के लिए आ बैठी थीं। वो एक उजाड़ जिला था, सुर्ख सुर्ख ईंटों के मकान इस तरह बने हुए थे कि किसी तरतीब का ख्याल ही ना आता। बस ऐसा महसूस होता कि किसी ने उठाकर बिखेर दिए हैं। वहां उस छोटी सी जगह में कितने बहुत से मंदिर थे, उनके सुनहरे कलश सर उठाए जैसे भगवान की प्रार्थना करते रहते। मंदिरों में सुबह शाम घंटे बजते, पुजारियों के भजन गाने की मध्यम मध्यम आवाज घर तक आती। वहां दरख्त किस कदर थे, धूल से अटी हुई कच्ची सड़कों पर दोनों तरफ आम, जामन और पीपल के घने दरख्त थे। इन दरख्तों के साए में रागीर अंगूछे बिछाए गठड़ियां सर के नीचे रखकर मजे से सोया करते। इन दिनों बाहर का मौसम था, आमों में बोर आ चुका था, कोयल हर वक्त कूका करती। इन दिनों तो वहां वो आई थी। जब इस नई जगह पर अब्बा का तबादला हुआ तो उसने महसूस किया कि वो बिल्कुल तन्हा और उदास है। वही इसका शऊर जागा था और कुछ सोचने समझने की सलाहियत ने जन्म लिया था। उस दिन जब सब लोग नए घर में उतरे थे तो सामान के बड़े बड़े बंडल सहन में हर तरफ रखे हुए थे, जिन्हें अब्बा महकमा की तरफ से मिले हुए चपड़ासी की मदद से खुलवा रहे थे। अम्मा घर और सामान की तरफ से बिल्कुल बेताल्लुक सी मालूम होती, फिर भी उन्होंने कई बार घूम फिर कर ऊंचे ऊंचे मेहराबदार बरामदों, कमरों और गुसलखाने वगैरह को देखा था। तहमीना आपा नजरे झुकाए छोटा मोटा सामान उठा उठा कर कमरों में ले जा रही थी। अम्मा सख्त बेजारी से आराम कुर्सी पर नीम दराज थी। सफदर भाई अपने कमजोर शाने झुकाए बरामदे की मेहराब में उकड़ू बैठे थे। तुम भी अपने मामू की मदद करो, अम्मा ने बड़ी हकारत से सफदर भाई की तरफ देखा था। रहने दो, वो कमजोर हो गया है बुखार से, फिर सफर में भी थक गया है, अब्बा ने आहिस्ता से कहा। ये तो हमेशा ही थका रहता है, अम्मा बुड़बड़ाई और फिर जैसे जलकर अब्बा के साथ सामान खुलवाने लगी। तहमीना आपा ने घबरा कर सफदर भाई को देखा और फिर नजरें झुका ली। वो कुछ खौफजदा सी हो गई। उसी दिन तो उसे एहसास हुआ कि घर की फिजा खींची खींची है। वो सबके बिगड़े तेवर देखकर और भी रंजीदा हो गई। उसे तो अपनी वही पुरानी जगह याद आ रही थी। वहां तो लाइन से सारे अफसरों के पीले पीले बंगले बने हुए थे। बंगलों से जरा दूर आमों का बाग था, पास छोटा सा तालाब और उस तालाब में बच्चे और बहन से साथ साथ नहाया करते। वहां उसकी हमसिन बहुत सी लड़कियां और लड़के थे। सारा दिन मजे मजे के खेल खेले जाते और कुछ नहीं तो पानी में बैठी हुई भैंसों को डेले ही खींच खींच कर मारे जाते। बाग में घुसकर कैरियों की चोरी की जाती, मगर जब चोरी पकड़ी जाती तो बाग का रखवाला उन्हें कुछ भी ना कहता, बल्कि जमीन पर टपकी हुई कच्ची कैरियां खुद ही चुनकर उन्हें दे देता। अपने बाबू होरों के बच्चे हैं, वो बड़े प्यार से उनके सरों पर हाथ फेरता। कमला और उषा उसे मुंह चिढ़ाती, उसके बड़े दांतों का मजाक उड़ाती, मगर वो ना बिगड़ता। रात को खानसामा बुआ इसकी जिद पर कहानियां सुनाती, शहजादे और शहजादी की कहानी, जो एक ही बिस्तर पर बीच में तलवार रखकर सो जाते थे। वो इस कहानी से सख्त फिक्रमंद हो जाती। अगर किसी ने जरा सी भी करवट ली तो कहीं शहजादे या शहजादी का जिस्म न कट जाए। हांसामा बुआ उसे समझाते कि भाई कहानियों में जिस्म नहीं कटा करते, फिर भी उसकी फिक्र कम ना होती। सोते में भी वो खौफ से करवट न बदलती, जाने वो तलवार उसके बिस्तर पर कहां से आ जाती। हांसामा बुआ और भी कैसी मजे मजे की कहानियां सुनाती थी, राजा भोज और गंगू तेली की कहानी, कठपुतली की कहानी जो राजा के महल की हर चीज खा गई थी। कठपुतली की कहानी भी कितनी अच्छी थी। कठपुतली की बुरी हरकतों की इतला जब राजा को दी जाती तो बड़े मीठे अंदाज से गाया जाता, कागज की कठपुतली रे, राजा गई सब घोड़े खाए जी। हांसामा बुआ जब राजा को गाकर बताते थे तो वो नाराज नहीं होता था, वो हैरत से पूछती थी, नहीं बेटा, राजा लोग बड़े नाजुक मिजाज होते हैं, उनके सामने हर बात अच्छी तरह कहनी पड़ती है, नहीं तो वो बाल बच्चों समेत कोल्हों में ना पिलवा दे। उसे खौफ सा महसूस होता तो हांसामा बुआ उसे अपने पसीने से चिपचिपाते हुए सीने से लगा लेती। अम्मा से तो इसका सिर्फ इतना ही ताल्लुक था कि जब वो खेलते खेलते बाहर से आती तो उनके लिपट जाती, वो इसे प्यार करके फिर से खेलने की हिदायत करती। अब्बा तो इसे सिर्फ दूर ही दूर से नजर आते, सुबह दफ्तर चले जाते और शाम को बैठक दोस्तों से भर जाती। वो सब जोर जोर से बातें करते, कह कहे लगाते और हांसामा बुआ उनके लिए चाय बनाती रहती। उसके बाद वो स्कूल में दाखिल करती गई। अब तो इसकी दुनिया और भी वसी हो गई थी, उसकी कई साथी लड़कियां स्कूल में आ गई थी और वो दूसरी नई नई लड़कियों से दोस्तियां बढ़ा रही थी। जब वो पढ़कर आती तो सफदर भाई उसे अपने पास बुलाते, पढ़ने के सिलसिले में सवालात करते, उसके हर जवाब पर जोर से हंसते, वाह तुमको तो कुछ नहीं आता, वो उसे सख्त बुरे लगते और वो जल्दी से भागने की कोशिश करती। जब वो पांचवीं क्लास में पढ़ती थी तो उसने हांसामा बुआ के मशवरे से सलीके वाले खेल खेलना शुरू कर दिए थे। सेहन के एक कोने में गुड़ियों का बड़ा सा घरौंदा बनाया गया, उस घरौंदे में गुड़ियों की शादी होती, धूम से बारात निकलती, गुड़ियों के बच्चे पैदा होते, आपा से वसूल की हुई ढेरों कुतरनों से कपड़े सिए जाते, हांसामा बुआ शादियों और पैदाइश पर खजूरें बनाकर देती, कभी कभी जर्दा भी पकता। उस दिन कमला उषा और राधा छूत ना मानती, वो सब खुले खजाने जर्दा खाती। मगर यहां तो कुछ भी ना था, उसे बाहर निकलकर हर तरफ नजर दौड़ाई, चरवाहे बकरियां हांग के लिए जा रहे थे, दो चार नंग दड़ंग बच्चे बैठे मिट्टी से खेल रहे थे, दो छोटे छोटे कच्चे मकान दिखाई दे रहे थे। उसके घर के पास तो सिर्फ एक ही दो मंजिला मकान था, या फिर चपड़ासी का घर जो पीली मिट्टी से बना हुआ था। वो बड़ी देर तक ऊंचे दो मंजिला मकान को देखती रही, मगर वहां से कोई लड़की ना उतरी जिसे वो अपना दोस्त बना सकती। एक मर्द सफेद बुराक धोती का पल्लू थामे तेजी से नीचे उतरा और चला गया। उसके बाद घर की ऊपरी मंजिल से हारमोनियम पर गाने की आवाज आने लगी। उसने गीत के बोल दोहराए, मगर उसे वो बोल कितने गैर दिलचस्प लगे थे। दरख्तों पर परिंद जोर जोर से चहचहा रहे थे। वो बड़ी बेजारी से बैठक की दहलीज पर बैठी रही। उसका जी जा रहा था कि खूब चीख चीख कर रोए, अपने कपड़े फाड़ डाले और यहां से भाग जाए। बेटा हमारे पास आ जाओ, चपड़ासी की बीवी सेहन की कच्ची नीची दीवार पर उछक उछक कर उसे बुला रही थी। वो अंदर आ गई, बहुत सा सामान ठिकाने लग चुका था, सेहन में आराम कुर्सियां बिछ गई थी और चपड़ासी चाय बना चुका था। आपा, सफदर भाई, अब्बा और अम्मा सब थके से चुपचाप बैठे थे। इससे किसी ने भी बात ना की। बीच सहन में मेहंदी का छोटा सा पौधा लगा था जिसकी पत्तियां खूब हरी हो रही थीं। उसने लोटे में पानी भरकर पौधे में डालना शुरू कर दिया। चाय पियो बिट्टू, सफदरबाई ने उस दिन पहली बार कुछ ऐसे प्यार से बात की कि वो उनके पास चली गई और उनके करीब वाली कुर्सी पर बैठ गई। घबरा रही हो बिट्टू, नई जगह है, कोई साथ खेलने वाला भी नहीं। सफदरबाई ने उसके सर पर हाथ फेरा तो वो फूट फूट कर रोने लगी। एक सफदरबाई थे जो इस बात को समझ सकते थे। वो अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे उनकी गोद में झुक गई। अम्मा ने बड़ी सख्त नजरों से उसकी तरफ देखा तो उसने आंखें बंद करके जैसे उन नजरों से अपने आप को महफूज कर लिया। अम्मा बड़े करख्त लहजे में चपड़ासी को समझाने लगी, तुम्हारे जिम्मे बाहर के काम हैं, तुम घर के काम नहीं कर सकते। फौरन एक मामा का इंतजाम करो, मगर यह ख्याल रखना कि जवान ना हो। ऐसी औरतें दो कोड़ी का काम नहीं करती। बस कल तक आपकी मर्जी का इंतजाम हो जाएगा सरकार। शाम हो रही थी। अब्बा अपनी पतली सी छड़ी उठाकर बाहर घूमने चले गए। अम्मा ने एक बार कनखियों से सफदर भाई को घूरा। जाओ अब खेलो। अम्मा ने उसका हाथ पकड़कर उठाया और जैसे रट्टा हुआ जुमला इस्तेमाल किया। वो फिर बाहर दहलीज पर जा खड़ी हुई। दो मंजिले मकान की ऊपरी मंजिल से धुआं उठ रहा था। मंदिरों से घंटों की तेज आवाजें आ रही थीं। हम खेलो, किससे खेलो, यहां इस जंगल में कौन है? उसका जी भर रहा था। घर के अंदर रहो या फिर इस दहलीज पर बैठो और खेलो खेलो कहे जाओ। वो बुड़बड़ा रही थी। उस पर सब लोग मुंह बनाकर बैठे हैं। वो घुट घुट कर रोने लगी। आओ बेटा रोटी खाओ। चपड़ासी की बीवी दीवार से उछक रही थी। उसे जल्दी से आंसू पूंछ कर मुंह फेर लिया। आलिया बिट्टो, आपा बड़ी बड़ी आंखें झुकाए उसके पीछे आ खड़ी हुई। चलो अंदर, अब अंधेरा हो रहा है। हाय कितनी खूबसूरत जगह है ये भी। उन्होंने भी ठंडी सांस भरकर दूर दूर देखा और फिर उसे अपने कमर से लिपटाए अंदर आ गई। वो बैठक के पास वाले छोटे कमरे से गुजर रही थी तो एक लम्हे को ठिठक कर खड़ी हो गई। सफदरबाई मेज पर रखी हुई लालटेन के पास झुके कोई किताब पढ़ रहे थे। सहन में कितार से पलंग बिछे हुए थे। अब्बा का पलंग मेहंदी के पौधे के पास बिछा हुआ था। उनके पास इसका पलंग था। वो अपने बिस्तर पर खामोशी से लेट गई। चांद उभर रहा था, आसमान रोशन था, मगर आपा का चेहरा सहन के हल्के से अंधेरे में भी आसमान से भी कहीं ज्यादा साफ नजर आ रहा था। इसे तो उस दिन एहसास हुआ कि आपा हर वक्त गुम रहती है। उस वक्त भी वो अपने बिस्तर पर बैठी बड़े खोए हुए अंदाज से मेहंदी की पत्तियां नोच नोच कर बिखेर रही थी। दालान की मेहराब के बीच में रखी हुई लालटेन की लो बहुत नीची थी। चपड़ासी बावर्ची खाने में खाना पका रहा था। अम्मा दूसरी लालटेन हाथ में उठाए कमरों में जाने क्या करती फिर रही थी। जब तुम स्कूल में दाखिल होगी तो फिर बहुत सी लड़कियां दोस्त बन जाएंगी। आपा ने उसकी तरफ करवट लेकर उसका हाथ थाम लिया और होले होले सहलाने लगी। मगर दुख के शदीद एहसास ने आपा की मोहब्बत का जरा भी असर न लिया। हाथ छुड़ाकर उसने मुंह फेर लिया, फिर आसमान पर उड़ते हुए परिंदों को देखने लगी और उसे पता भी न चला कि कब नींद का झोंका आ गया। अरे बिट्टू, बगैर खाना खाए सो रही हो? उसे चौंक कर आंखें खोल दी। सफदरबाई उस पर झुके हुए थे। क्या जरूरत थी अभी इसे जगाने की? अम्मा उस लहजे में बोली जैसे वो चपड़ासी को हदाय दे रही थी। सफदरबाई उसके पास से हटने वाले थे कि उसने उनका हाथ पकड़ लिया और फिर लेटे लेटे झुककर उनकी टांगों से लिपट गई। सफदरबाई ने दो एक बार अम्मा को नीची नीची नजरों से देखा और फिर उसका सर गोद में रखकर बैठ गए। कहानी सुनाइए सफदरबाई, यहां तो खानसामा बुआ भी नहीं, उसने भराई आवाज में कहा। कौन सी कहानी बिट्टो? उसी शहजादी की जिसके अब्बा ने उसे डोले में बिठवाकर जंगल में छुड़वा दिया था। उसे अम्मा की परवाह किए बगैर कहानी की फरमाइश भी कर डाली। आपा जैसे एहतरामन अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गई थीं। मैं तुमको दूसरी कहानी सुनाता हूं। एक गरीब लड़का जो शहजादी से मोहब्बत करता था। हाँ तो सुनो, एक था लड़का। आपा घबरा कर इधर उधर देख रही थी। नया पैराग्राफ। बारिश अब तेज हो गई थी, हवा जैसे दरवाजों पर दस्तक दे रही थी। चम्मी सोते में जाने क्या बड़बड़ा रही थी, उसने लहाफ में मुंह छुपा लिया। उसे कितनी तफसील से जरा जरा सी बातें याद आ रही थी। सफदरबाई कितने वजी मगर कितनी मिस्कीन सूरत के थे। उनकी मिस्कीनी की वजह अम्मा की भरपूर नफरत थी। अब्बा जान उनसे उसी कदर मोहब्बत करते, उनकी जरा जरा सी जरूरतों का ख्याल रखते। आपा सफदरबाई से बात तो ना करती मगर चोरी छुपे उनका ख्याल जरूर रखती। अम्मा को किस कदर दुख था कि सफदरबाई उनके शोहर के पैसे से पढ़कर एफए पास कहलाते हैं और रोजगार की परवाह किए बगैर ठाट से अल्लम गल्लम किताबें पढ़ा करते हैं। अम्मा सारा दिन जल जल कर कहा करती कि ये किताबें किसकी रोजी का सामान बन सकती हैं, ये निकम्मा मुझे खाकर इस घर से निकलेगा। वहीं उसने एक नया नाम सुना था, नजमा फुफी। ये अब्बा की सबसे छोटी बहन थी जो अलीगढ़ कॉलेज में पढ़ती थी और वहीं हॉस्टल में रहती थी। छुट्टियों में वो अपने सबसे बड़े भाई के घर चली जाती। अम्मा की सूरत से बेजार थी मगर अम्मा जब उन्हें याद करती तो नफरत का सांप हर तरफ फुंकारने लगता। खैर वो तो नजरों से दूर थी मगर सफदर भाई तो हर वक्त आंखों के सामने थे और अम्मा को उनसे पीछा छुटाना नामुमकिन नजर आता था। अम्मा अपने दुखों में मगन रहती और अब्बा अपनी दुनिया में मगन। दफ्तर से आने के बाद वो घंटा आधा घंटा घर में गुजारते। अम्मा किसी न किसी बात पर लड़ती और अब्बा बाहर की राह लेते। किस्म किस्म के दोस्त आ जाते जिनसे घंटों जोशो खरोश से बातें होती। एक बार उसने अब्बा की बातें सुनने की कोशिश की थी मगर आजादी, गांधी और आजाद वगैरह के नामों के सिवा उसके पल्ले कुछ भी ना पड़ा था। वो उकताकर दरवाजे के पास से हट गई थी। हां सफदर भाई को इन बातों से कुछ ऐसी दिलचस्पी थी कि घंटों सर झुकाए बैठे रहते। दरवाजे की ओट में खड़े होकर वो इशारों से उन्हें उठाना चाहती मगर सफदर भाई पर कोई असर ना होता। वो सफदर भाई से रूठ जाती। उन दिनों तो सिर्फ सफदर भाई उसकी खुशियों का सहारा थे। सफदर भाई से कैसी आम सी एक कहानी वाबस्ता थी। ये कहानी सुनाते हुए अम्मा कितनी मगरूर मालूम होती। उस दिन भी जब वो रापा अम्मा के पास बैठी थी तो अम्मा ने सफदर भाई की कहानी छेड़ दी थी। इस सफदर बदसात का बाप एक गरीब किसान का बेटा था। इसका दादा और बाप तुम्हारे दादा की जमीनों पर काम करते थे। इसके अलावा घर के कामों को भी नौकरों की तरह अंजाम देते। जाने कैसे ये दोनों बदबख्त तुम्हारी दादी के सर चढ़ गए थे। जो घर में कोई उनसे पर्दा भी ना करता। वैसे तुम्हारी दादी की तबीयत तो गांव भर में मशहूर थी। उनकी सख्ती का ये आलम था कि जब किसी नौकर चाकर से नाराज होती तो बटी हुई रस्सी लेकर उसकी खाल उधेड़ देती। हाय क्या गरूर था, क्या रोब था, जिधर से गुजरती लोगों की रूह कब्ज हो जाती। फिर सफदर के बाप दादा से हमेशा अनायत से बोला करती, तुम्हारी दादी का तो ये हाल था कि कभी अपने शौहर से सीधे मुंह बात ना की, और अल्लाह मरहूम को बख्शे उन्होंने तुम्हारी दादी को दुख भी तो बहुत दिए थे। उनकी दो दाश्ताएं थीं जिनके तीन लड़के थे। दादा ने अपनी दाश्ताओं के लिए अलग अलग घर बनवा रखे थे। उन्हें तुम्हारी दादी की हवेली में आने की इजाजत ना थी। हाँ, उनके बच्चे हवेली में आते जिन्हें तुम्हारी दादी नामों के साथ हरामी कहकर पुकारती। वैसे उन दिनों दाश्ताएं रखना इतनी बुरी बात ना समझी जाती, इसलिए तुम्हारी दादी ये सब कुछ बर्दाश्त कर लेती। जायज बीवी की शान तो इसी तरह दुबाला रहती। जमींदारी का सारा काम तुम्हारी दादी के सुपुर्द था। दोनों दाश्ताओं के खाने पीने का सामान अपने सामने तुलवाकर भिजवा दिया करती। शादी का मामला भी खुद तुम्हारी दादी तय करती। इन्होंने तुम्हारे बाप और चचाओं की शादी अपनी मर्जी से की थी। बहुओं को बहुत दबा कर रखती, मगर उन्होंने मुझसे कभी ज्यादती न की। मैं उनकी तरह बड़े घर की बेटी थी। मेरा भाई इंग्लैंड में पढ़ता था। मुझ में तुम्हारी दादी जैसा रोब था। तुम्हारी बड़ी और मंझली चची उनके सामने खून न कर पाती। तुम्हारी दादी अगर किसी के सामने झुकती थी तो वो तुम्हारे सबसे छोटे चचा थे। जब खिलाफत की तहरीक चली तो वो तुर्की चले गए। फिर उनका पता न चला कि कहां गए। फिर भी तुम्हारी दादी ने कभी किसी के सामने एक आंसू ना बहाया। बेटे को याद करके एक आना भरी कि कहीं उनके रोप दाब की नजरें नीची ना हो जाएं। मगर अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। तुम्हारी सलमा फूफी ने 14 साल की उम्र में उनका मुंह काला कर दिया। तुम्हारी दादी ने एक दिन अपनी आंखों से देख लिया कि वो सफदर के बाप का हाथ पकड़े सरगोशियां कर रही हैं। उस दिन दादी ने सलमा फूफी को कमरे में बंद करके इतना मारा कि सारा जिस्म नीला हो गया। जब मैं उनके जिस्म पर हल्दी चूना लगाने बैठी तो कांप कांप गई। फिर भी ये सजा तुम्हारी सलमा फूफी के लिए कितनी कम थी। उन्हें तो जिंदा दफना देना चाहिए था। दूसरे दिन उन्होंने सफदर के बाप दादा को जमीनों से निकाल दिया और दो चमारों को बुलाकर हुक्म दिया कि उन्हें सबके सामने जूते मार मार कर गांव से निकाल दें। उसी दिन शाम को नाइन ने आकर बताया कि जाने सफदर के बाप दादा से क्या कसूर हुआ कि सबके सामने जूते मारे गए। वो दोनों गांव से चले गए। इस खबर को सुनकर दादी ऐसे बेपनाह रोब से उठी कि सब कांप गए। मगर तुम्हारी सलमा फूफी जीते जी मर गईं। इस किस्से के बाद उन्होंने ना तो ढंग से कपड़े पहने और न बालों में कंघी की। तुम्हारी दादी उन्हें हर वक्त नजरों में रखती। एक दिन मैंने उनको बड़ी अजीब हालत में देख लिया। सर्दियों के दिन थे। तुम्हारी सलमा फूफी भी धूप खाने छत पर गई हुई थी। उनके करीब की छत की मुंडेर पर जंगली कबूतर बैठा गुटर मुंह कर रहा था और सलमा उससे कह रही थी, ए कबूतर, तू शहजादियों का पैगाम ले जाता है, मेरे हाल पर रहम कर, एक पैगाम मेरा भी ले जा। उनसे कहियो कि सलमा तेरे फराक में तड़पती है। कबूतर तो खैर यूं ही फुर से उड़ गया, मगर मैंने तुम्हारी दादी को ये बेशर्मी की बातें कह सुनाई। उन्होंने बड़ी शफकत से मेरे सर पर हाथ फेरा और कहा कि दूसरी बहुओं को ये बातें ना मालूम हो, फिर भी ये बात तो सबको मालूम होकर ही रही। अल्लाह जाने वो कबूतर था कि जिन। उस दिन तुम्हारे दादा कहीं बाहर गए थे और कह गए थे कि रात मेहमान खाने में रहेंगे। दादी ने उस दिन सोने से पहले घर में ताला लगाकर चाबियां अपने सराहने रख ली थी, मगर जब सुबह उनकी आंख खुली तो चाबियों का गुच्छा और तुम्हारी सलमा फूफी दोनों गायब थे। तुम्हारी दादी दम बखूद बैठी थी। उन्होंने सबको ऐसी नजरों से देखा जैसे कह रही हूं कि अगर मुंह से उफ की तो जिंदा गाड़ दूंगी, कुत्तों से नचवा दूंगी। दूसरे दिन शाम को दादा वापस आए तो दादी ने बंद कमरे में देर तक बातें की। जब वो बाहर निकले तो उनका चेहरा शर्म और गुस्से से सुर्ख हो रहा था। इतना किस्सा कहकर अम्मा ने बड़ी हसरत से कहा था कि काश सलमा मेरी बेटी होती तो पहले ही दिन उसे अपने हाथों से जहर खिला देती। तुम्हारे दादा जाने क्या करते, मगर उसी दिन तुम्हारे अब्बा चंद दिन की छुट्टी लेकर आ गए और बड़ी बेशर्मी से सलमा के हक में अपने अब्बा से लड़ते रहे। मेरा गैर से बुरा हाल था, काश तुम्हारे बाप से मेरी शादी ना हुई होती। तुम्हारी दादी गुस्से से टहलती रही, मगर तुम्हारे अब्बा की मूंछों की लाज रखते हुए मुंह से कुछ ना बोली। मगर तुम्हारे दादा को जाने क्या हुआ कि उसी वक्त अपनी दाश्ताओं को घरों से निकाल दिया और गांव से चले जाने का हुक्म भिजवा दिया। दादी को जब ये बात मालूम हुई तो उन्होंने हुक्म दिया कि सिर्फ दाश्ताएं जाएंगी मगर उनके बच्चे नहीं जाएंगे, इसलिए कि वो उनके शौहर का खून थे। तीनों लड़के घर आ गए। तौबा, उनकी सूरतें देखकर घिन आती थी। दोनों छोटे लड़के ऐसे नदीदे थे कि बरसात के दिनों में मक्खियों की भटकी हुई झूठी गुठलियां चूस चूस कर हैजे में मर गए। शुक्र है मर गए, वरना क्या पता कि तुम्हारे अब्बा उन्हें भी आज कलेजे से लगाकर किसी कॉलेज में पढ़वा रहे होते। सलमा ने भाग कर निकाह कर लिया था। तुम्हारे अब्बा की धमकियों से डर कर तुम्हारे दादा ने बजाहिर कुछ न किया, मगर जहां कहीं सलमा की मियां नौकरी करते उसे छुड़वा देते। सलमा और वो दोनों भूखे मरते। सच्ची बात तो यह है कि उन्हें तो कुत्तों की तरह भूखा मरना चाहिए था, मगर तुम्हारे अब्बा ने उन्हें इंसानों की तरह मर जाने दिया। सफदर की पैदाइश पर सलमा को दिख हो गई और कुछ दिन के बाद एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर गई। इसके साथ ही ये पार्ट अपने अख्तिताम को पहुंचा।